नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत उशो रेडियो की नई कड़ी में। आज का एपिसोड समर्पित है जुलाई मंथ के फुल मून को, जो कि गुरु पूर्णिमा या मास्टर्स डे दर्शन के नाम से भी जाना जाता है उशो वर्ल्ड में। शुरुआत करते हैं द माला एल्बम से लिए गए थैंक यू ओशो नंबर के साथ। कैन वी रियली थैंक ओशो? अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट वी कैन डेफिनेटली सेलिब्रेट लिव हिम विद आर साइलेंसेस एंड म्यूजिक।
I heard your call coming from the river. You were dying and I was reborn. I heard your call coming from the river. Thank you, Osho. You are not just my master, also a lover and friend, also a lover and friend. You are not just my master. Singing your song, I became a musician, dancing your dance. I discovered my wings, singing your song. I became a musician, dancing your dance. I discovered my wings. Thank you, Osho. You are not just my master, also a lover and friend, also a lover and friend. You are not just my master. Your voice, you were teaching me silence. Watching your grace, I learned how to be. Hearing your voice, you were teaching me silence. Watching your grace, I learned how to be. Thank you, Osho. You are not just my master, also a lover and friend, also a lover and friend. You are not just my master. Yes, my song, full of tears and love, for a beautiful master, whom I have never seen. Yes, my song, full of tears and love for a beautiful master whom I have never seen. Thank you, Osho. You gave me back my dignity, full of love and respect, full of love and respect. You gave me back my dignity, and I thank you, Osho, and I love you, Osho, Osho, Osho.
आज का डिस्कोर्स बिन खन परत फुहार वॉल्यूम नंबर 9 से लिया गया है, जिसमें ओशो सहजोपाई की कविताओं पर बोलते हुए हमें गुरु की जीवन में क्या आवश्यकता है इसके प्रति जगा रहे हैं। और जो म्यूजिक पीस अभी हम सुनेंगे वो 1984 में मास्टर्स डे दर्शन के दौरान लाइव रिकॉर्डेड है ओशो की फिजिकल प्रेजेंस में।
जीवन की हार जब पूरी होती तभी परमात्मा की सुध आनी शुरू होती। जब जीवन पूरी तरह पराजित होता है तुम चारों खाने चित्त गिर गए होते हो, तब तुम्हारी आंख आकाश की तरफ उठती। अन्यथा आदमी कुएं के चांद को पकड़ने में लगा रहता है, नहीं पकड़ पाता तो सोचता है और थोड़ी कुशलता चाहिए। लेकिन परछाई के चांद सत्य नहीं है, दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ज्ञानियों ने संसार को माया कहा है। परमात्मा है सत्य, संसार है उसकी परछाई। सत्य की छाया का नाम माया है। धुआं कोसो गड़बनो मन में राज संजोए, झाई माई सहजिया कभू सांस न होए। निर्गुण सरगुण एक प्रभु देखो समझ विचार, सतगुर ने आंखें दई निश्चय कियो निहार। निर्गुण सरगुण एक प्रभु देखो समझ विचार, लेकिन परमात्मा की तरफ की यात्रा का पहला कदम जब तक पूरा न हो जाए तब तक परमात्मा एक शाब्दिक बातचीत रहता है। जब तक संसार व्यर्थ न हो तब तक परमात्मा सार्थक नहीं हो सकता। दो दिन पहले एक मित्र मेरे पास थे, अपने बेटे को लेके आए थे। कहने लगे बेटा होशियार है बहुत, और उसने संन्यास ले लिया, ये भी अच्छा किया, लेकिन दोनों संभालने चाहिए, संसार भी और संन्यास भी। इस जगत में भी सफलता पानी चाहिए और उस जगत में भी। ऊपर से देखने पर बात बिल्कुल ठीक लगती है कि इस जगत में भी सफलता मिलनी चाहिए उस जगत में भी, लेकिन जब तक तुम्हें इस जगत की सफलता सफलता दिखाई पड़ती है तब तक उस जगत की सफलता की तरफ तो तुम चेष्टा ही ना करोगे। इस बात से मैं राजी हूं कि संसार छोड़कर भागने की कोई भी जरूरत नहीं, संसार में तुम परिपूर्ण रहते हुए संन्यस्त हो सकते हो, लेकिन संसार में रहते हुए एक बात के प्रति तो तुम्हें जाग ही जाना होगा कि संसार की सफलता सफलता नहीं, वो चांद कुएं का है, वो छाया है। संसार में रहते हुए ही संन्यस्त हुआ जा सकता, और कोई उपाय नहीं, जाओगे भी कहां, सभी तरफ संसार है, जो है सभी तरफ संसार फैला है, भागोगे कहां, भागने को कोई जगह नहीं है, जागने को जगह है। जागने का अर्थ इतना होता है कि तुम ये देख लेना कि जो दौड़ संसार की है वहां चांद असली नहीं। अगर काम चलाऊ चलना भी पड़े तो चलते रहना, अगर भीड़ वहां जाती हो तो भीड़ के साथ खड़े रहना, कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि भीड़ को नाहक नाराज करने से भी क्या सार है। और उनको तो वहां सफलता दिखाई पड़ रही, यही तो उस फकीर ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रख के किया, बच्चा है, नाहक रुलाने से भी क्या फायदा है, इतने से जो खुश हो जाता है कि छाया पकड़ ली, तो एक तरकीब कर दी कि सिर पर हाथ रख दिया, छाया पकड़ में आ गई। लेकिन तुम्हें तो जाग ही जाना चाहिए कि संसार की कोई सफलता सफलता नहीं, सब सफलता गमाया गया श्रम, सब सफलता खोया गया समय, सब सफलता अपने को बेचना है और कूड़ा करकट को खरीद लाना है। एक दिन तुम पाओगे बाजार तो सब खरीद के घर में आ गया, तुम बाजार में कहीं खो गए, तुम तो न बचे और सब बच गया। निर्गुण सरगुण एक प्रभु देखो समझ विचार, संसार की क्षणभंगुरता स्पष्ट हो जाए तो फिर परमात्मा की तरफ आंख उठती है, आंख खुलती है। और वैसी जो आंख है उसको निर्गुण सरगुण एक प्रभु, उसको तो निर्गुण और सगुण एक ही दिखाई पड़ता है, हिंदू मुसलमान ईसाई का परमात्मा एक ही दिखाई पड़ता है। जिनको ये परमात्मा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं समझ लेना कि उनकी अभी आंख परमात्मा की तरफ नहीं उठी, क्योंकि परमात्मा तो एक है, चांद तो एक है, कुएं हजार है, और हजार कुओं में हजार प्रतिबिंब बनते हैं। कोई मुसलमान का कुआ है उसमें मुसलमान का प्रतिबिंब, कोई हिंदू का कुआ है उसमें हिंदू का प्रतिबिंब, किसी में गंदा पानी भरा है किसी में स्वच्छ पानी भरा है, तो प्रतिबिंब में थोड़ा फर्क भी पड़ता है। कोई कुआ संगमरमर से बना है, कोई कुआ साधारण मिट्टी का ही, कुछ भी उसमें पत्थर नहीं लगे, तो भी प्रतिबिंब में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जिसका प्रतिबिंब है वो एक। प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं लेकिन सत्य एक है। निर्गुण सरगुण एक प्रभु, तुम उसे सगुण कहो तो ठीक, क्योंकि सभी गुण उसके हैं। तुम उसे निर्गुण कहो तो ठीक, क्योंकि जो सभी गुण जिसके हैं कोई गुण उसका नहीं है। जिसके सभी गुण हैं वो गुणों के पार है। तुम उसके हाथ पूरे भरे कहो तो ठीक है, तुम उसके हाथ पूरे शून्य कहो तो ठीक है, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही अवस्था के दो नाम हैं। तुम चाहो तो हर हरियाली में उसे देखो, हर फूल में उसे पहचानो, हर तारे में उसकी झलक पाओ, और तुम चाहो तो हर हरियाली के पीछे, चांद तारों के पीछे, पहाड़ों के पीछे जो छिपा हुआ निराकार अस्तित्व है उसमें उसे खोजो। चाहो उसकी अभिव्यक्ति में पकड़ो और चाहे उसकी आत्मा में। आत्मा देखोगे तो निर्गुण है, अभिव्यक्ति देखोगे तो सगुण है। उसके वस्त्र देखोगे तो बड़े प्यारे, बड़े रंग बिरंगे। उसके भीतर जाओगे सब रंग खो जाते, विराट शून्य मिलता है। निर्गुण सरगुण एक प्रभु, देखो समझ विचार। लेकिन ये देखने से मिलता है ये अनुभव। ये अगर अकेले विचार करने से मिलता तो विचारक इसे पा लेते, ये अकेले विचार करने से नहीं मिलता। बहुत लोग विचार करते रहते हैं परमात्मा के संबंध में, उनका विचार कहीं भी नहीं ले जाता, क्योंकि विचार तो मन का ही जाल है। मन से ही तो जो पकड़ में आता है वो संसार है। विचार से पकड़ने की कोशिश परमात्मा को ऐसी ही है जिससे कोई छाया को पकड़ रहा हो, पकड़ में ना आती हो। विचार खुद ही छाया है, उस छाया से तुम क्या पकड़ने जाओगे सत्य को। मन चाहिए शून्य निर्विचार, यही अर्थ है ध्यान का। विचार से कोई कभी परमात्मा को नहीं पाता, ध्यान से पाता है। ध्यान निर्विचार दशा है, जब तुम्हारे मन में सब तरंगें समाप्त हो गईं, कोई विचार नहीं उठता, झील परिपूर्ण मौन है, सन्नाटा है गहन, तब तुम्हारे संबंध जुड़ते हैं। देखो समझ विचार, तीन शब्द सहजो प्रयोग कर रही है, दृष्टि समझ और विचार। कुछ लोग विचार से पाने की कोशिश करते हैं, वे उपलब्ध नहीं हो पाते, दार्शनिक बन जाते हैं, फिलोसफी पैदा हो जाती है, बड़ा तत्व का ऊहापोह करते हैं। उनसे अगर तुम विचार की बात करो तो विचार का बड़ा फैलाव खड़ा कर देते, लेकिन उनके विचार के जाल में परमात्मा की मछली कभी फंसती नहीं। जाल उनका कितना ही बड़ा हो, मछली कभी पकड़ में नहीं आती। फिर कुछ लोग हैं जो समझदारी से उसे पाने की कोशिश करते हैं। समझ आती है जीवन के अनुभव से, जीवन के अनंत अनुभव हैं, उन सारे अनुभवों का जो निचोड़ है उसका नाम समझ। जवान आदमी परमात्मा को विचार से पाना चाहता है, बूढ़े समझदारी से। वो कहते हैं हमने जीवन देखा, मगर जीवन तो छाया है, छाया का अनुभव भी सत्य तक कैसे ले जाएगा। विचार से तो मुक्त होना ही है, समझ से भी मुक्त होना है। विचार पढ़ने लिखने से आ जाते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय से जब कोई लौटता है तो बड़े विचारों से भरा होता है। बूढ़े उस पर हंसते हैं, वो कहते हैं थोड़ा ठहरो, जरा जीवन को देखो तब पता चलेगा। मैंने सुना है कि दिल्ली से कृषि शास्त्र में एक व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उपाधि के अंतिम परीक्षण के लिए उसे देहात भेजा गया, एक किसान के खेत का पूरा विवरण बनाने के लिए, ताकि पता चल जाए कि व्यवहारिक भी है उसका ज्ञान या नहीं। तो उसने और सब विवरण तो बना लिया, कितने झाड़ हैं, कितनी पैदावार है, कितनी जमीन एकड़ है, कितनी एकड़ पर कितनी पैदावार होती है, कितना बीज बोया जाता है, कितनी फसल आती, सब आंकड़े बिठा लिए। एक चीज उसकी समझ में नहीं आ रही थी और किसान उसके ढंग से हंस रहा था और वो उसको कोई सहायता भी नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम खुद ही जानकार हो। झाड़ को उसने देख के कहा कि इस झाड़ की हालत ऐसी कि मुझे लगता है इसमें इस साल सेव लगेंगे नहीं। किसान ने कहा कि तो मुझे भी पक्का है कि सेव इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि ये झाड़ सेव का है ही नहीं। ऐसा उसकी चीजों पर वो हंस रहा था। झोपड़े में एक बकरा था, बूढ़ा बकरा जिसको दाढ़ी भी उगाई थी। ये युवक कभी विश्वविद्यालय को छोड़ के बाहर तो गया नहीं था, कृषि शास्त्र भी किताब से सीखा था, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ही जिंदगी गंवाई थी। इसने ये जानवर इसकी कुछ पहचान में ना आया और दाढ़ी और, तो इसने कहा कि ये कौन। तो उस किसान ने कहा आप ही बताओ कि ये कौन, आप जानकार हो, हम तो गरीब किसान हम क्या जाने। उसने तार किया विश्वविद्यालय को, विवरण लिखा कि बूढ़ा है, दाढ़ी है, कौन है खबर करो। तो उधर से खबर आई कि मूर्ख वो किसान है, उसको भी नहीं पहचान पा रहा था। दाढ़ी है, बूढ़ा है, तो वहां से जो खबर रजिस्ट्रार ने दी उसने सोचा कि भी किसान को नहीं समझ पा रहा, हद हो गई। एक जिंदगी है किताब की, एक जिंदगी है जीवन के अनुभव की। किताब से विचार मिल सकते हैं, समझ नहीं मिलती। समझ तो जीवन के कड़वे मीठे अनुभव से मिलती, वही नॉलेज और विजडम का फर्क है, विचार और समझ। लेकिन सहजो कहती है अकेली समझ से अगर वो मिलता होता तो सभी बूढ़ों को मिल जाता, अगर विचार से मिलता होता तो सभी विचारकों को मिल गया होता। लेकिन न तो विचारकों को मिलता दिखता है, जवानों को मिलता दिखता है, न बूढ़ों को मिलता दिखता है। तब फिर कोई एक और तीसरी चीज चाहिए, देखो समझ विचार, विचार का भी उपयोग किया, समझ का भी उपयोग किया, लेकिन दोनों का उपयोग देखने के लिए किया। देखो समझ विचार, सतगुरु ने आंखें दई, निश्चय कियो निहार। तो सदगुरु न तो विचार देता, या अगर विचार देता है तो इसलिए देता है कि तुम्हारी बंद आंखें खुले। न सतगुरु समझ देता, अगर समझ भी देता है तो इसी सहारे के लिए देता है कि तुम्हारी आंख खुले। लेकिन मौलिक बात है आंख खुले। संसार को देखने की एक आंख है, परमात्मा को देखने की दूसरी आंख है। तो तुम कितने ही कुशल हो जाओ संसार को समझने और जानने में, उसी आंख से तुम परमात्मा को न जान सकोगे, वो आयाम अलग है। और आंख खुले तो ही कुछ हो सकता है, आंख कैसे खुलेगी। संसार से नकारात्मक सहारा मिल सकता है, संसार से असफलता मिल सकती है, विषाद मिल सकता है, दुख मिल सकता है। दुख विषाद असफलता के कारण तुम्हारे मन में एक आकांक्षा पैदा हो सकती है कि संसार के पार जो है उसे मैं खोजूं। बस इतना ही संसार से मिल सकता है। विचार से तुम्हें संसार के प्रति संदेह मिल सकता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा न मिलेगी। लेकिन संसार के प्रति संदेह आ जाए तो परमात्मा की तरफ श्रद्धा में जाने में सुगमता हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। कम से कम व्यर्थ से छुटकारा हुआ तो सार्थक के लिए जगह बन जाती। जैसे किसी को नया बगीचा लगाना है तो पहले वो घास पात को उखाड़ता है, व्यर्थ के झाड़ झंखाड़ को उखाड़ता है, दो चार फीट जमीन खोद के व्यर्थ की जड़ें जो हैं उनको निकाल फेंकता है। इसको फेंक देने से कोई बगीचा नहीं लग जाता, लेकिन बगीचे लगने की सुविधा बन जाती। अगर इसको ही तुम लगाए रखो तो तुम बगीचा बो भी दो तो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत को बढ़ने की बड़ी क्षमता होती, सही को गलत हमेशा दबा लेता है। अगर तुमने घास पात छोड़ दिया और बीज तुमने बो दिए फूलों के, तो फूलों के बीज कहां खो जाएंगे पता ना चलेगा। मुल्ला नसुद्दीन के पड़ोस में एक आदमी ने मकान लिया। नसुद्दीन का बगीचा बड़ा सुंदर था। उस आदमी को भी मन में हुआ वो भी बगीचा लगाए। उसने पूछा नसरुद्दीन से कि मैंने बीज बो दिए, अब बीज में से अंकुर भी आ गए हैं और घास पात भी उग आया है, तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन कौन है, घास पात क्या है और बीज क्या है। नसरुद्दीन ने कहा सरल तरकीब, दोनों को उखाड़ लो, जो फिर से उगा है वो घास पात, जो फिर न उगे समझ लेना कि असली था, बीज था। घास पात को बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप उगता है। दोनों उखाड़ लो तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कौन कौन है। बगीचा तैयार करना हो तो नकारात्मक तैयारी है, घास पात उखाड़ दो, जड़ें निकाल दो, मिट्टी साफ कर लो, पर यही बगीचा तैयार नहीं हो गया। ये बगीचा तैयार होने की शुरुआत है, बीज बोने पड़ेंगे। संसार के प्रति संदेह आ जाए इतना विचार और समस्या हो सकता है, बस इतना हो जाए तो भी सौभाग्य, क्योंकि 100 में 99 को तो इतना भी नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि समझ लोगों को और भटका देती, जवान तो जवान, बूढ़े और भी संसार में ग्रस्त हो जाते। जवान में तो थोड़ा सा संन्यास का भाव भी होता है, बूढ़े में वो भी नहीं बचता, क्योंकि मौत इतने जोर से करीब आती वो सोचता है 2 दिन और बचे हैं भोग लूं, 4 दिन और बचे हैं, अब कहां परमात्मा देखेंगे, फिर जिंदगी तो गई, इतने दिन और थोड़ा सुख मिलता है वो और भोग लें। समझदारों की नासमझी का हिसाब नहीं। कभी कभी जवान तो हिम्मत करके निकल जाता है संन्यास के पथ पर, बूढ़े नहीं हिम्मत कर पाते। इसलिए तुम चकित होगे कि संसार में जो बड़े सन्यासी हुए वो सब जवान घरों जब निकले थे तो जवान थे, बुद्ध, महावीर जवान थे। तुमने बुद्ध और महावीर के मुकाबले कोई बूढ़ों को कभी सन्यासी होते देखा? तुम एक नाम ना गिना सकोगे। बूढ़े तो इतने ज्यादा संसार में अनुभवी हो जाते कि उनका अनुभव ही उन्हें डुबा देता है। तो न तो विचार से कोई पहुंचता, न कोई अनुभव से पहुंचता है। संसार का अनुभव और विचार दोनों ही व्यर्थ है। हां, इतना ही उपयोग हो सकता है कि दोनों से तुम्हें पता चल जाए कि कोई आंख तुम्हारे भीतर बंद पड़ी है, कोई तीसरा नेत्र बंद पड़ा है, वो खुले है, तो शायद परमात्मा की छवि का कोई अनुभव हो सके, तो शायद सत्य से कोई संबंध सेतु बन जाए। सतगुरु ने आंखें दी, सतगुरु विचार नहीं देता न समझ देता है, सतगुरु देखने की क्षमता देता है, दृष्टि देता है, सतगुरु आंख देता है। कैसे देता है आंख? ये थोड़ा सूक्ष्म नाजुक है। सतगुरु तुम्हें कैसे आंख देता है? सतगुरु पहले तो तुम्हें अपनी आंख से देखने की सुविधाएं देता है। जैसे कोई छोटे बच्चे को अपने कंधे पे बिठा ले, वो कहे कि देख, कंधे पे बैठ के बच्चा दूर तक देख पाता है, नीचे खड़ा हो जाता है उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कंधे पे बैठ जाता है तो दूर तक देख लेता है। सतगुरु पहले तो तुम्हें कंधे पे बिठा के अपनी आंख से देखने के कुछ मौके देता है। वो अपनी आंख तुम्हारे सामने रख देता है कि जरा इससे भी झांको। इससे मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूं वो तुम्हें कोई विचार देने को नहीं कर रहा हूं। विचार देने से क्या होगा, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा पहले ही है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम जरा मेरी आंख से भी देखो, ये भी एक आंख है, ऐसे भी देखा जा सकता है। तुम्हें झलक मेरी आंख से मिल जाए तो तुम्हारी अपनी आंख में एक स्फुरना शुरू हो जाएगी। एक बार तुम किसी की आंख से देख लो तो दूसरे की आंख तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे की आंख की प्रतीति में तुम्हारी अपनी आंख के खुलने का शुभारंभ हो जाता। ऐसा ही समझो कि बिजली चमक गई, अंधेरी रात थी, एक क्षण को चमकी बिजली, लेकिन उस क्षण में तुम्हें सब दिखाई पड़ गया, रास्ता, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, अंधेरा घनघोर हो गया फिर, लेकिन अब तुम्हें पता है कि रास्ता है। टटोलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गिरने का भय है, लेकिन रास्ता कम से कम है। गुरु की आंख से देखने से एक श्रद्धा उमकती है कि रास्ता है। गुरु के पास होने से धीरे धीरे उसकी सुगंध तुम्हारे नासापुटों को भरती है और तुम्हें एहसास होना शुरू होता है, जो इसको हुआ वो हमें भी हो सकता है। जो एक व्यक्ति के लिए संभव हुआ वो सबके लिए संभव है। बुद्ध या महावीर या कृष्ण या सहजों के पास उनके जीवन का आनंद संक्रामक हो जाएगा। कभी कभी तुम्हारे बावजूद भी तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कभी कभी अनजाने भी वो तुम्हें हिला देंगे, जगा देंगे, तुम जरा सी पलक खोल के देख लोगे, तुम्हें भरोसा आने लगेगा। छोटा बच्चा चलता है, मां उसे हाथ का सहारा दे देती। चलना तो छोटे बच्चे को पड़ता है, लेकिन सहारे की वजह से आश्वासन आ जाता, सोचता अब गिरने वाला नहीं हूं, मां साथ। फिर भी गिरेगा, कई बार गिरेगा, लेकिन हर बार गिरने के बाद जब उठेगा तो उसकी गिरने की संभावना कम होती जाएगी, और मां उसे आश्वासन दिए जा रही कि चलो, घबराओ मत, जैसे मैं चलती हूं तुम भी चल सकोगे। गुरु ऐसे हाथ को सहारा देता है, जानता है कि क्षमता तुम्हारे भीतर छिपी है, थोड़े से प्रयोग की जरूरत है। तुम शायद घबरा गए हो, जन्म जन्मों से तुमने वो आंख खोल के नहीं देखी जिससे परमात्मा दिखता है, तुम शायद भूल ही गए हो, शायद आज अचानक कोई तुम्हें याद भी दिलाए तो तुम्हें याद नहीं आता, लेकिन किसी के सानिध्य में, सत्संग में, कभी ना कभी तुम्हारे भीतर भी उस केंद्र पर चोट पड़ने लगती है। सतत चोट की जरूरत है, इसलिए सत्संग एक सतत प्रक्रिया है। सतगुरु ने आंखें दई निश्चय कियो निहार। मन से तो सदा संदेह ही जाने जाते, विचार विचार विचार, निश्चित कुछ भी नहीं होता। जिनको तुम निश्चित विचार कहते हो उनमें भी तुम पीछे संदेह को छिपा पाओगे। अक्सर तो तुम इसलिए कहते हो कि मेरा विचार बिल्कुल दृढ़ है, जब तुम ये कहते हो तब तुमको भी पता है कि दृढ़ तुम इसीलिए कह रहे हो कि तुम्हें खुद ही शक है। तुम मरने मारने को उतारू हो जाते हो अपने विचार के लिए, वो भी इसी की खबर है कि तुम भीतर से डमाडोल हो। निश्चय बड़ी और बात है। निश्चय का मतलब है जहां संदेह है ही नहीं, और संदेह वहीं मिटता है जहां विचार भी मिट जाता है। निश्चय कियो निहार, वहां विचार नहीं होता, वहां निहार, वहां दिखाई पड़ता है, दर्शन होता है। सोचते थोड़ी हो, एक अंधा आदमी सोचता है कि प्रकाश है, आंख वाला आदमी देखता है कि प्रकाश है। अंधा विचार करता है, आंख वाला निहारता है। सतगुरु ने आंखें दई निश्चय कियो निहार, और जहां निहार है वहां निश्चय है, जहां विचार है वहां विभ्रम। विचार के पीछे ही चलती रहती है अनिश्चय की धारा। निहार चाहिए। परमात्मा को कोई सोचता नहीं, या तो तुम परमात्मा को देख लेते हो या नहीं देखते, ये मान्यता का सवाल नहीं है, दर्शन की बात, साक्षात्कार। सहजो हरि बहु रंग है, वही प्रगट वही गुप, वही तो प्रगट है वही गुप्त है। सहजो हरि बहुरंग है, सभी रंग उसे उसी के, और फिर भी कोई रंग उसका नहीं। जल पाले में भेदना ज्यों सूरज अरु धूप, बड़े प्यारे वचन हैं। जल पाले में भेदना, जल में और ओस में क्या कोई भेद, जल में और पाला छा जाए उसमें कोई भेद, कोई भी भेद नहीं। ज्यों सूरज अरु धूप, जैसे सूरज में और सूरज की धूप में कोई भेद है, ऐसे परमात्मा में और परमात्मा की सृष्टि में क्या कोई भेद है? ज्यों सूरज अरु धूप, वही है, वही फैला है। सूरज में वही संग्रीभूत है, केंद्रित है, धूप में वही फैला है, विस्तीर्ण। ये धूप का जो चंदोबा है उसी का फैलाव है, ये जो विराट अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है ये उसी का फैलाव है। सृष्टा और सृष्टि में क्या कोई भेद है? नर्तक और नृत्य में क्या कोई भेद है? गायक और गीत में क्या कोई भेद है? एक प्रगट है, एक गुप्त है। गीत प्रगट है, गायक गुप्त है। नृत्य प्रगट है, नर्तक गुप्त है। सृष्टि प्रगट है, सृष्टा गुप्त है, पर छिपा है कणकण में। सहजो हरि बहु रंग है, वही प्रगट वही गुप, जल पाले में भेदना ज्यों सूरज अरु धूप। चरण दास गुरु की दया, गयो सकल संदेह, छूटे बाद विवाद सब भई सहज गति ते। चरण दास गुरु की दया, जिन्होंने भी जाना है उन्होंने सदा यही कहा है कि वो अपने प्रयास से नहीं जाना, प्रसाद से जाना है। जानने वालों को जानते ही ये पता चलता है कि हमारा प्रयास तो कितना छोटा है, मुट्ठी से आकाश पकड़ने चले, हमारा प्रयास तो कितना छोटा है, बूंद सागर होने चली। हमारे प्रयास से ही अगर होता हो तो कभी हो ही ना सकेगा। एक बात ठीक से समझ लेना, अगर तुम्हारे प्रयास से ही परमात्मा मिलता हो तो कभी ना मिल सकेगा। तुम तो प्रयास भी करोगे तो गलत करोगे, तुम गलत हो। तुम जाओगे भी तो गलत राह में जाओगे, तुम्हारे भीतर गलत वासना भरी है। तुम जो भी करोगे वो गलत होगा, क्योंकि तुम अभी गलत हो। गलत से सही तो होगा भी कैसे? अगर गलत से सही हो जाए तब तो फिर सही होने की कोई जरूरत ही ना रही। तो मनुष्य जो भी करेगा उससे तो पा ना सकेगा। तो दो उपाय, या तो परमात्मा की अनुकंपा हो, लेकिन हमें परमात्मा का भी पता नहीं, हमें उसकी अनुकंपा भी बरस रही हो तो उसका हम कैसे उपयोग करें इसका भी पता नहीं। वो दिया भी जला दे हमारे पास तो भी हम ऐसे मूड हैं कि हम आंख बंद किए खड़े रहेंगे। वो हमारे द्वार पर दस्तक दे तो हम कहेंगे होगा हवा का झोंका, हम उसे पहचान भी ना सकेंगे। परमात्मा की अनुकंपा तो हम पर बरस ही रही है, पर हम पहचान नहीं पाते, हम पकड़ नहीं पाते। जैसे मछली सागर को नहीं देख पाई, ऐसा हम उसे नहीं देख पाते। इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो गया धर्म की खोज में, क्योंकि गुरु का अर्थ है जिसे हम देख पाते। गुरु चमत्कार है, एक अर्थ में चमत्कार इस अर्थ में है कि वो तुम्हारे जैसा है और तुम्हारे जैसा नहीं। परमात्मा तुमसे बिल्कुल अन्यथा है, सेतु नहीं बनता, वो अप्रगट है तुम प्रगट हो, वो असीम है तुम सीमित हो, वो निर्विचार है तुम विचार हो, वो सब कहीं है तुम कहीं कहीं हो। तालमेल नहीं बैठता, वो इतना विराट तुम इतने अणु, कैसे संबंध जुड़े, बूंद कैसे सागर से मिले। गुरु के साथ एक चमत्कार घटता है, वो तुम जैसा है और तुम जैसा नहीं। एक तरफ से गुरु बूंद है और एक तरफ से सागर है, इसलिए गुरु इस जगत में सबसे अनोखी घटना है। एक तरफ से मनुष्य है, एक तरफ से मनुष्य नहीं है, एक तरफ से उसकी दीवारें हैं ठीक तुम जैसी और दूसरी तरफ से उसके द्वार दरवाजे बिल्कुल खुले, खुला आकाश है। गुरु से संबंध बन सकता है और गुरु के सहारे धीरे धीरे परमात्मा से संबंध बन सकता है। इसलिए सहजो कहती है कि हरि को चाहे भुला भी दूं, गुरु को ना भुला सकूंगी, क्योंकि उसके बिना हरि से कोई संबंध ही ना होता।
जन्म दिया जगवाई,
गुरु ने आवाज गमन छुटाए, गुरु ने आवाज गमन छुटाए, गुरु ने आवाज गमन छुटाए, गुरु ने छुटा है।
हरि ने पांच चोर दिए साता, हरि ने पांच चोर दिए साता,
गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा,
अभी सुना गया नंबर चिन्मय एंड संदीप की लेटेस्ट म्यूजिकल एल्बम मिस्टिक पोएट से है, और प्रोग्राम के आखिर में सेलिब्रेशन म्यूजिक सुबोधा एंड अनीशा की दिस प्रेशियस मोमेंट एल्बम से, और म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। साथ ही ओशो रेडियो के नए प्रोग्राम तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
my feet.